Om शांति। हम सभी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है और कहते हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और अगर भगवान पढ़ाते हैं तो फिर भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर डॉक्टर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट क्या बनेंगे, डॉक्टर ही बनेंगे, और अगर बैरिस्टर पढ़ा रहे हैं, वकील पढ़ाएंगे तो अपने ही समान वकील बनाएंगे। तो यदि भगवान पढ़ाएंगे तो हमें क्या बनाएंगे, अपने ही समान भगवान भगवती बनाएंगे। और इसीलिए बाबा ने हमें इस पढ़ाई का लक्ष्य दिया है, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, यानी मनुष्य से देवता बनना। और देवता बनना उसकी क्वालिफिकेशन है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। यदि ये विशेषताएं हैं तो ही हम देवता कहलाते हैं। तो सबसे पहले है सर्वगुण संपन्न बनना। बाबा हमें चार विषय पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों विषय के द्वारा हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। तो बाबा पहले हमें ज्ञान देते हैं, हमें समझ देते हैं कि सर्वगुण संपन्न स्थिति क्या है और तीनों कालों में हमारे गुणों की स्थिति क्या रही, और इससे हमें निश्चय होता है, यानी पुनः हमें स्मृति आती है कि हम ही देवता थे और हम ही पुनः देवता बन सकते हैं, यानी हम सो हम। नहीं तो भक्ति में हम गाते थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, भगवान हम आपके चरणों की धूल हैं, चरणों के दास हैं, हे प्रभु जी मेरे अवगुण चित मत धरो या विषय विकार मिटाओ, यानी कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच नहीं सकते थे कि हम भी भगवान के समान इतने उच्च श्रेष्ठ गुणों वाले देवता बन सकते हैं। तो ज्ञान से वो स्मृति आते ही गुणों के स्मृति स्वरूप आत्मा बनने लगती है कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और इसके साथ साथ अनेक गुण जो उससे जुड़े हुए हैं, अंतर्मुक्ता का गुण, आज की मुरली में हमने अंतर्मुक्ता के बारे में सुना कि आत्मा अपनी भ्रकुटी रूपी कुटिया में बैठकर तपस्या कर सकती है, देह से न्यारा होने का गुण हमें आ जाता है, उस शांति के सुख का अनुभव करना हमें आ जाता है, पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, संतुष्टता, सहनशीलता, ये सब गुण जीवन में आने लगते हैं। और योग करने से जो बाबा की शक्ति हमें मिलती है, उस शक्ति के द्वारा वो गुण जीवन में धारणा में आते हैं। जिन गुणों की नॉलेज मिलती है वो जीवन में व्यवहार में दिखाई दे, ये दुनिया में भी लोग जानते हैं अच्छे गुण क्या हैं और बुराई क्या है, लेकिन धारण नहीं कर पाते हैं। सबको पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा करने से अशांति होती है, या किसी को दुख नहीं देना है, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब बातें दुनिया में भी लोग जानते हैं, लेकिन उसे धारणा नहीं बना पाते। जब परिस्थितियां आती हैं तो वहीं उनकी सारी जो जानकारी है या ज्ञान वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे समझने के साथ साथ ही उस ज्ञान को धारणा में, व्यवहार में लाते हैं, तब तो हम कहेंगे सच्चे ब्राह्मण हैं। अगर नहीं ला पाते हैं अभी तक भी, जानते तो हैं, रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे धारणा में नहीं है, जैसे युधिष्ठिर की कहानी सुनी होगी महाभारत में, कि द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा देते थे, तो एक दिन उन्होंने कहा क्रोध मत कर, ये पाठ है, होमवर्क है आपके लिए, और कल सभी को ये पाठ याद करके आना है। तो सभी पांडव और कौरव दूसरे दिन ये पाठ उन्होंने सुना दिया गुरु को, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा गुरु जी मुझे याद नहीं हुआ है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इतना सरल पाठ तुमको याद नहीं हुआ, दो शब्दों की ही तो बात है, क्रोध मत कर। तो उन्होंने कहा नहीं गुरु जी मुझे सचमुच याद नहीं हुआ है। तो गुरु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल याद करके आ जाना। फिर अगले दिन भी जब उससे पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरु जी मुझे आज भी याद नहीं हुआ है। गुरु को फिर आश्चर्य हुआ, थोड़ा गुस्से से बोले इतना सरल पाठ याद करने में तुम इतना समय लगा रहे हो। फिर युधिष्ठिर ने कहा ठीक है गुरु जी कल याद करके आऊंगा। फिर तीसरे दिन गुरु ने फिर पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? तो कहा गुरु जी नहीं याद हुआ। तो अब गुरु जी को खुद को गुस्सा आया और एक चपत उन्होंने उसके गाल पर लगा दी। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरु जी अभी याद हो गया। तो उन्होंने कहा क्यों इतना, मतलब सजा मिलने के बाद तुमको पाठ याद हुआ है? तो उसने कहा कि गुरुजी पाठ ही था क्रोध मत कर। तो मैं तीन दिन से पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी बात में गुस्सा तो नहीं आता है। हाँ कल दुर्योधन ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मैंने देखा कि मुझे फिर भी थोड़ा गुस्सा आया, भले मैंने उसे कुछ कहा नहीं लेकिन मुझे मन में तो गुस्सा आया, तो इसका मतलब मुझे वो पाठ याद नहीं हुआ है। फिर मैं सारा दिन पुरुषार्थ करता रहा, फिर आज जब अभी आपने मुझे चपत लगाई तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया, तब मैंने समझा कि मुझे याद हो गया है और इसीलिए मैंने आपको कहा कि मुझे ये पाठ याद हो गया है। तो हमारे जीवन की धारणा ये है कि जो बाबा ने हमें कहा है वो हमारे स्वरूप में हो, वो गुण हमारे जीवन में दिखाई दें और फिर उससे हम सेवा करते हैं। जो चौथा विषय है हमारा कि हम अपने गुणों से, अपने व्यवहार से गुणदान करते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि देखो इनका जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना ऊंचा है, ऐसे ही फिर हमारा भी जीवन होना चाहिए। लेकिन लक्ष्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, हम सभी बाबा के बच्चे संपन्न बनना चाहते हैं, बाप समान संपूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते कहीं ना कहीं माया की, माया के टेस्ट पेपर कहो या माया का प्रभाव कहो, वो आ जाता है। और ऐसे हम देखते हैं तो बाबा ने जो हमारे लिए किया, हम कैसे भी थे, जब हम बाबा के पास आए तो हम कोई सर्वगुण संपन्न तो नहीं थे, और बाबा को भी मालूम है कि मैं पतित दुनिया में आया हूँ, पतित दुनिया कलयुग है, तो आत्माएं अपनी तमो प्रधान स्थिति में हैं, और इस समय सभी विकारों के कारण हर आत्मा में बहुत अवगुण है, लेकिन फिर भी एक गुण भी बाबा ने हमारा देखा, कोई ना कोई विशेषता तो हर ब्राह्मण आत्मा में है, उस विशेषता के कारण ही हम बाबा के बने हैं। तो वो एक गुण ही बाबा ने हमारा देखा और हमें अपना लिया, और बाबा को मालूम है कि धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते ये एक गुण से सर्वगुण संपन्न बन ही जाने हैं, इनको ही सर्वगुण संपन्न बनना है, इनको ही 16 कला संपूर्ण बनना है। तो इतनी ऊंची दृष्टि, इतनी श्रेष्ठ भावना बाबा ने हमारे प्रति रखी। हाँ, लेकिन ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हैं जब हम, तो कहीं कहीं हमारी ये भावना नहीं रह पाती। हमें दूसरों के अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि है तो सही ना, आत्माओं में अवगुण तो है ही, कमियां तो है ही, हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विकार तो प्रबल होता ही है। तो वो उसके अंदर अगर 36 गुण हैं और वो एक अवगुण है मानो, तो हम क्या देखते हैं? 36 गुण नहीं देखते हम, उस एक अवगुण को ज्यादा देखने लग जाते हैं कि ये आत्मा में ये कमी है। तो बाबा कहता है अगर किसी के भी अवगुण पर अगर नजर गई तो माना हमने बुराई को टच किया, और अगर हमने बुराई को टच किया तो हम सच्चे वैष्णव नहीं हैं। इसे दुनिया में स्थूल में भी जो ब्राह्मण होते हैं वो किसी बुराई को टच नहीं करते, यानी अशुद्ध खान पान को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और अगर छू भी जाते हैं किसी ऐसे वैसे से तो वो फिर से अपना शुद्धिकरण करते हैं ना। आजकल तो इस जमाने में इतना छुआछूत को नहीं मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। तो बाबा ने कहा कि आप तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, और अगर आप किसी की बुराई को छूते हो, मानो आपकी दृष्टि किसी के अवगुण पर गई, तो आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं रह जाएगी, और अगर बुद्धि शुद्ध नहीं रही तो उसमें शुद्धतम परमात्मा की याद नहीं ठहर सकती। फिर योग लगाने की कोशिश करेंगे और योग नहीं लगेगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। फिर दूसरी बात होती है, केवल देखते नहीं हैं, देखने के बाद अगर वो वृत्ति में चली गई तो वर्णन किए बिना नहीं रह सकेंगे, दूसरे को सुनाए बिना नहीं रह सकेंगे, आप जानते हो ये क्या करते हैं, हाँ ये कैसे हैं। फिर उसके बाद परचिंतन की लिस्ट में आ गए, अगर हमने किसी की बुराई वर्णन की तो बाबा उसको परचिंतन करना कहता है, या किसी की ग्लानी की, मानो निंदा की, तो ये निंदा और ग्लानी करना विकर्म के खाते में आता है। तो भले छोटा पाप है ऐसे कहेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे पाप का बोझ हम बढ़ाने लगते हैं। फिर उससे वातावरण बनता है, मैंने एक को कहा, फिर दूसरे जिसने सुना उसने तीसरे को कहा, बात तो वहीं नहीं रुकती है। अगर मेरा कोई है, मैंने उसको सुनाया, वो तीसरे तक जाता है, फिर उसके बाद वो चौथे तक जाता है, फिर वो पांचवे तक जाता है, और पूरा वातावरण में वो बात घूमने लगती है, और हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। और अगर जो नहीं जानता है उसको बोलते हैं, अरे तुमको इतना भी नहीं पता, आप बुद्धू हो क्या? इसको रामायण की कथाएं कहते हैं ना, दुनिया में भी जो कथाएं सुनते हैं उसमें कनरस बहुत आता है, सुनने में मजा बहुत आता है ना, कथा सुनने का क्या होता है, सुनने में आनंद मिलता है। वो बाबा कहता है 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है, तो जब कोई ऐसी कहानियां सुनाता है तो बहुत मजा लेकर के उसको सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। अच्छा फिर ऐसा हुआ, अच्छा फिर और क्या हुआ, और फिर इसका परिणाम कि संगठन को कमजोर करने की जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर आ जाती है। और फिर अगर हमने एक उंगली किसी की और उठाई तो 3 उंगली किसकी और है? अगर एक कमी उस सामने वाले में है तो पहले 3 कमी किसमें है? सभी तो सर्वगुण संपन्न नहीं है, अगर उसमें कमी है तो मुझ में भी कमी है कि नहीं है, या हम संपूर्ण बन के आए हैं, है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो हमारे अंदर भी है। चलो वो नहीं होगी, जो उनके अंदर कमी है वो हमारे अंदर नहीं है, कोई दूसरी कमी है, पर है तो सही। तो जो हम कहते हैं हाँ, वो उतना ही दुगनी गति से हमारे पास आता है घूम करके, जिसको कहते हैं इको होता है। ऐसे ही एक बार एक माँ अपने बच्चे से बहुत नाराज हुई, तो वो गुस्से में आकर के उनके घर के सामने पहाड़ी थी, तो तो जाकर के उसने बोलना शुरू किया, हाँ तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। तो पहाड़ी से इको होके आया यही, तुम बहुत बुरी हो। तो बच्चा डर गया कि ये आवाज़ कैसी आ रही है, कौन मुझे कह रहा है बुरी हो बुरी हो। तो उसने जाकर अपनी माँ को सुनाया कि वहाँ पहाड़ी में कोई आदमी है जो मुझे कहता है कि तुम बुरी हो। तो माँ समझ गई, माँ ने बोला कि बेटा तुम जाकर के बोलो तुम अच्छी हो। तो उसने जाकर के बोल के देखा उसको, तुम अच्छी हो, तो आवाज़ आने लगी तुम अच्छी हो। तो जैसा हम देते हैं वैसा ही वो घूम कर हम तक आता है। ये संसार का नियम है कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान ही आपको मिलेगा, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार ही आपको मिलेगा। तो यदि मैंने किसी की बुराई की, कमी देखी, उसका वर्णन किया, वो घूम करके दुगने रूप में होकर के, क्योंकि वो भी मेरी बुराई जानते हैं, अगर मैंने उनकी बुराई बताई है तो वो भी जानते हैं कि हमारी बुराई क्या है, और वो उतनी ही उससे उसका वर्णन करेंगे और फिर हमारे खाते में हमें क्या मिला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम उल्टी होशियारी करते हैं तो वो हमें उल्टा लटकाने के निमित्त बन जाती है, और अल्पकाल की प्राप्ति कई बार हो जाती है लेकिन सदा काल की प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। तो यहां पर हमें परिवर्तन करने की शक्ति का प्रयोग करना है। बाबा कई बार मुरलियों में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की विशेषता क्या होती है कि यदि उसको बदबूदार खाद दी जाती है, ऐसे ही दी जाती है, जो भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं उनको क्या दिया जाता है, बदबूदार खाद दी जाती है, लेकिन वो गुलाब का फूल उस बदबू वाली खाद को खुशबू में बदल लेता है। अगर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो वो वातावरण माहौल को बदलने के लिए जलाई जाती है, तो अगर माहौल में बदबू है तो उस अगरबत्ती की खुशबू से पूरा माहौल खुशबूदार हो जाता है। तो हमें भी किसी भी आत्मा के अवगुण नहीं, लेकिन उसके जो भी अच्छाई है, गुण है, विशेषता है, उसे हमें देखना है, परिवर्तन करना है। इसे बाबा ने कहा कि अगर वो काला कोयला भी है तो भी आपको डायमंड देखना है। आत्मा के आदि अनादि स्वरूप, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, लेकिन वो स्वरूप उसका पवित्र ही है, वो उसका सर्वगुण संपन्न स्वरूप ही है। तो मुझे आज भले उसमें वो गुण नहीं दिखाई दे रहे लेकिन उसके अनादि स्वरूप में तो वो गुण विद्यमान है। एक बार एक बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी नाम, उसका स्टील कंपनी का, अमेरिका की स्टील कंपनी का मालिक था वो, तो उससे किसी ने पूछा कि तुम अपने कर्मचारियों के साथ कैसे पेश आते हो, इतने सफल आप कैसे हैं अपने बिजनेस में। तो उसने कहा कि मेरी विधि है जैसे आप सोने की खुदाई करते हैं, तो सोने की खुदाई करने के लिए बहुत मिट्टी, टनों मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाकर के एक तोला सोना दिखाई देता है। लेकिन हमारी नजर किस पे होती है, मिट्टी पे नहीं होती, हमारी नजर सोने पर होती है, तब जाकर के वो सोना हमें मिलता है। तो कई बार हमें गुणों पर नजर डालने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है कि गुण हमें उतने नहीं दिखाई दे रहे, कमियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारी नजर फिर भी किस पर होनी चाहिए, गुण पर। तो आत्मा के उस स्वरूप पर हम नजर रखेंगे तो हम सहज ही गुणग्राही दृष्टि बना पाते हैं, और उसका लाभ हमें ये मिलता है कि जितना हम आत्मा के गुणों पर नजर रखते हैं उतना उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव मन में जागृत होता है। हम अपने संस्कारों को मिला पाते हैं उन आत्माओं से, संस्कार मिलन हो सकता है और उससे संगठन मजबूत होता है, हम एक दूसरे के समीप आते हैं। दूसरों की विशेषताओं को देखते हैं तो वो विशेषताएं भी हमारे अंदर आने लगती हैं। जैसे मानो हमने कहीं कचरा देखा तो कचरे के लिए हम क्या करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, हम वहां से अपना मुंह घुमाते हैं, नाक बंद करते हैं और निकल जाते हैं। कहीं गंदगी का ढेर दिखाई दिया आपको तो कैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा ही करेंगे ना। और कोई बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो हम उस दृश्य को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। तो यहां भी मानो किसी की कमी पर मेरी नजर जा रही है तो तुरंत क्या करना चाहिए, अपने मन को उससे मोड़ देना चाहिए और उसके गुणों की तरफ अपनी सोच, अपने मन को ले जाना चाहिए। तो जो गुण उस आत्मा में है, भले उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कभी कभी किसी के अवगुण हमें इतने ज्यादा दिखाई देते हैं कि उनके गुणों को देखने के लिए हमें थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन वो पुरुषार्थ करके भी हम उनके गुणों पर नजर रखें। जैसे हम बाबा को देखते हैं, बाबा हमें कहते हैं कि हमें बाप समान बनना है, बाबा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने हर एक आत्मा की विशेषता से कार्य लिया, उस विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाया, फिर उसके अंदर जैसी भी विशेषता थी, और फिर ये देखा कि जिस विशेषता से कार्य लिया उस विशेषता के आधार पर उसकी विशेषताएं और बढ़ती गई। इसको बाबा कहता है कि मानो आप एक विशेषता को कार्य में लगाते हो और उस एक के आगे अगर हम एक बिंदी लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10, और एक और बिंदी लगाएंगे तो 100, और एक बिंदी लगाएंगे तो 1000। तो बाबा की सेवा में विशेषता को यूज करने का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, कि वो एक बिंदी अपने आप आगे लगती जाएगी और हम महसूस करेंगे कि वो गुण हमारे अंदर स्वतः बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार बाबा ने कहा था कि बहुत ज्यादा पुरुषार्थ अगर आपसे होता है तो भले नहीं करो, लेकिन सिर्फ एक काम करो, दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी है, सुख देना है और सुख लेना है, संतुष्ट करना है और संतुष्ट रहना है। अगर ये आपने अपने जीवन में धारण कर लिया कि चाहे जो भी हो लेकिन मुझे सदा सुख देना है और सुखी लेना है, दुख लेना भी नहीं है, ऐसे नहीं कि हम दुख ले लें। फिर ऐसा भी होता है कि किसी ने मुझे जरा सी बात कह दी तो हम इतना फीलिंग में आ जाते हैं कि दो दिन तक उसको लेकर के व्यर्थ संकल्प मेरे मन में इतना चलते रहेंगे कि सारा ज्ञान योग खत्म हो जाता है। तो ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। तो जिस संघ में हम रहते हैं, खासकर हमें इस बात पर भी अटेंशन देना है कि संघ का असर भी हमारे ऊपर होता है, और इसीलिए सत्संग का महत्व बाबा हमें बताते हैं। तो अगर हम गुणों वालों के संग में रहते हैं, जो गुणवान हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ गुणवान बनने का है, तो वो धारणाएं भी हमारे अंदर स्वतः होने लगती हैं। उस पर भी जैसे कहानी सुनाते हैं कि एक संत ने एक तोता पाला और वो तोते को रोज सिखाते थे, जैसे वो सबका स्वागत करते थे, आइए आपका स्वागत है, पधारिए, बहुत प्यार से बोलते थे। तो वो रोज सुनता था और उसने वही बोली सीख ली, आइए पधारिए आपका स्वागत है। तो जो भी आश्रम में आता था, जब वो ये आवाज सुनता था तो उसको बहुत खुशी होती थी कि देखो ये तोता कितनी मीठी भाषा में मेरा स्वागत कर रहा है। और ऐसे ही एक तोता जंगल में एक पेड़ पर था और उस पेड़ के नीचे रोज चोर अपना लूटा हुआ सामान लेकर आते थे और उनकी भाषा होती थी पकड़ो लूटो मारो ऐसे। तो वो तोते ने वही भाषा सीख ली और वो भी यही बोलता था, पकड़ो लूटो मारो। और कभी गलती से कोई यात्री अगर उस पेड़ के नीचे आ गया तो वो तोता यही शब्द बोलता था, तो वो यात्री घबराकर भाग जाता था कि पता नहीं यहाँ कौन है। तो ऐसा ही असर हमारे ऊपर भी आ सकता है। लेकिन ऐसे ही एक और भी कहानी है कि जब हम गुण देखते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन संगठन में आता है। कि एक आश्रम था, उसमें जो वो बौद्ध आश्रम था उसमें भिक्षु रहते थे, तो धीरे धीरे वो आश्रम जो है वो वीरान होने लगा, आने वाले जो लोग थे उनकी संख्या कम होने लगी, तो जो मुखिया था वो थोड़ा सा चिंता करने लगा। तो एक रात उसको सपना आया कि जो पड़ोसी साधु रहता है वो समस्या का हल बता सकता है। तो वो सुबह उठा और सबसे पहला काम उसने ये किया कि वो अपने पड़ोसी साधु की कुटिया में गया और उसने अपनी समस्या बताई कि हमारे आश्रम में पहले बहुत लोग आते थे लेकिन आजकल लोगों का आना बहुत कम हो गया है और मुझे चिंता है इस बात की, लेकिन मुझे सपना आया है कि आप मुझे बता सकते हो। तो उसने कहा कि मुझे आपके आश्रम के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपके भिक्षुओं में कोई एक देवदूत है, आप उस देवदूत को पहचानो और आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो उसने कहा अच्छा, ये देवदूत भी है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो आश्रम में आया और उसने अपने सारे भिक्षुओं को बुलाया और कहा कि देखो, हम में से कोई एक देवदूत है, तो आप लोग नजर रखो कि कौन वो देवदूत हो सकता है। अब उनकी समस्या ये हुई थी, उनके आश्रम में लोग आना इसलिए कम हो गए थे क्योंकि वो आपस में बहुत ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे की रोज बुराई करते रहते थे। अब ऐसे माहौल में जब आने वाले लोग आते थे तो उनको अच्छा अनुभव नहीं होता था क्योंकि लोग आश्रम में आते ही शांति के लिए हैं, और जब उनको अच्छा अनुभव नहीं होता था तो वो चले जाते थे आश्रम से, आना कम हो गया। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने ये सुना कि हम में से कोई एक देवदूत है, उनकी दृष्टिवृत्ति बदल गई। हर एक दूसरे में देवदूत देखने लगा कि कहीं ये तो देवदूत नहीं है, हाँ ये भले खाना बनाता है रसोई में लेकिन इसके इतने अच्छे गुण भी हैं, ये देवदूत हो सकता है। हाँ दूसरे के लिए, ये बगीचे में काम करता है, भले बगीचे में काम करता है लेकिन इसके अंदर तो ये अच्छे अच्छे गुण हैं। तो अब तक जो बुराई पर उनकी नजर पड़ती थी सिर्फ, वो बदल करके अब अच्छाई पर पड़ने लगे। और जैसे ही दृष्टिवृत्ति बदली वैसे ही आश्रम का सारा वातावरण बदल गया। अब वो एक दूसरे की बुराई नहीं, एक दूसरे की तारीफ करने लगे और फिर कहने लगे कि अच्छा इसमें ये गुण है, कहीं यही तो देवदूत नहीं है। तो आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ने लग गई। अब ये जो मुखिया था, अभी तक भी उसको समझ में नहीं आया कि वास्तव में देवदूत कौन है, तो वो फिर से गया उस साधु के पास। उसने कहा कि बहुत कोशिश की हमने लेकिन अभी तक हम पहचान नहीं पाए, हमें तो सभी देवदूत नजर आते हैं। तो उसने कहा यही आपकी समस्या का हल है। उसने कहा कि कोई एक देवदूत नहीं लेकिन वो आप सबके अंदर कोई ना कोई गुण है और उन गुणों के कारण ही आपके आश्रम इतना महान है। लेकिन क्योंकि आपके लोगों की नजर बदल गई थी, आश्रम का वातावरण बिगड़ा और उसकी वजह से लोगों ने आना कम कर दिया। तो बाबा हमको यही सिखाते हैं, बाबा ने हमें सिखाया कि हम सबको आपस में एक दूसरे के गुणों को ही देखना है, गुणों को ही वर्णन करना है, और वो गुण देखते वर्णन करते गुणों का दान देते हम सब देवता बन जाएंगे, हम सब देवात्मा बनने वाले हैं, या कहेंगे कि वही हम इस तरह से देवदूत बनने वाले हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आपस की बात तो छोड़ो, लेकिन बड़े हैं हमारे जो निमित्त हैं, वरिष्ठ हैं, हम रोज आश्रम में आते हैं, हाँ उनको भी देखते हैं, और कई बार हमें उनकी भी कोई बातें पसंद नहीं आती हैं, उनकी भी बुराइयां हमें नजर आने लग जाती हैं कि देखो ये इतने साल से बाबा के ज्ञान में है, निमित्त बने हुए हैं, लेकिन ऐसा करते हैं। और अगर ये भी हमारे दिमाग में चलता है तो गलत है सही है, ऐसे तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे जो निमित्त बने हुए हैं उनमें कोई कमियां नहीं है, अभी तक वो पूरी तरह संपूर्ण बन चुके हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर हम उनके प्रति ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी वृत्ति या व्यवहार रखते हैं, तो उसके लिए बाबा कहता है कि बिल्कुल उन आत्माओं के प्रति मन की आंख बंद कर दो, बुराई देखने की जो आंख है उसे पूरी तरह से बंद कर दो। क्योंकि अगर वो आत्मा निमित्त बनी है तो जरूर उसमें कोई ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण बाबा ने उसे निमित्त बनाया है। तो बाबा ने तो गुण देखकर निमित्त बनाया ना, और उनका जो निश्चय है वो इतना अटूट होता है बाबा के ऊपर कि उनकी वो कमी उसके आगे नहीं के बराबर होती है। तो वो तो अपने पेपर में पास हो जाएंगे समय पर, लेकिन यदि हमने उनकी कमी देखना जारी रखा, हम तो वैसे भी पीछे आए हैं, उतना तो उनके जितना तो हमारा पुरुषार्थ जमा भी नहीं है, हमें लास्ट सो फास्ट जाना है, कम समय में हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना है, तो उस पुरुषार्थ के लिए कभी भी हमें अपने निमित्त बनी हुई आत्माओं की कमी नहीं देखना है। और दूसरी बात बाबा कहता है कि मानो आपके संगठन में, आपकी क्लास में आपको लगता है कि ये जो ऐसा कर रहे हैं जरूर इनके ध्यान पर लाना चाहिए, नहीं तो हमारे यज्ञ का नुकसान हो सकता है, हमारी डिससर्विस हो सकती है ना, बाबा की डिससर्विस हो सकती है, बाबा का नाम खराब हो सकता है, तो भी उसके लिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको हम कहें वो सही स्थान है, आपस में उसका वर्णन नहीं करें। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हमें कहीं कचरा डालना है तो उसके लिए स्थान निश्चित होते हैं कि आप डस्टबिन में कचरा डालो, अगर इधर उधर कचरा डालेंगे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, और उस गंदगी से क्या पैदा होंगे, कीटाणु, मच्छर, रोग पैदा करने वाले। तो अगर मेरे मन में ऐसी कोई बात आती है तो सही स्थान है या तो मैं बाबा के कमरे में जाऊं, और यदि बाबा से मेरा कनेक्शन, मेरी लाइन क्लियर है तो उस अनुसार मैं बाबा से अपने दिल की बात कह करके और बाबा के ऊपर हम छोड़ दें। बाबा तो सर्वशक्तिवान है और बाबा जानता है कि उसको कैसे हल करना है। अगर इतनी बाबा से मेरी लाइन क्लियर नहीं है, मेरा योग इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे ऐसा अनुभव हो, तो निमित्त बनी हुई आत्मा को जाकर के हम वो बात बताएं और उसे कहें कि ये बात ऐसी है और आप देखो। फिर कई बार क्या होता है, चलो हमने बता दिया निमित्त को, तो किस भाव से बताना है ये भी जरूरी है कि हम शुभ भावना, शुभ कामना के भाव से उस बात को कहें, ऐसे नहीं उसको क्रिटिसाइज करने के भाव से। कई बार हमारा भाव क्रिटिसाइज करने का होता है, उस आत्मा को नीचा दिखाने का होता है, उस आत्मा को गिराने का भाव, अपने को होशियार सिद्ध करना और उसको नीचा दिखाने का भाव, अगर ऐसा भाव है तो ये गलत है। लेकिन बाबा कहते हैं सही भाव है, शुभ भावना से आप अपनी बात दो और फिर न्यारे हो जाओ। फिर ये भी नहीं देखना है कि अच्छा हुआ क्या, उन्होंने क्या एक्शन लिया, हाँ मैंने ये बात तो कही लेकिन आखिर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हमने इसमें अपनी बुद्धि लगाई तो हमारे कितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और अगर बड़ों की नजर में हमने वो बात लाई है तो बड़ों को पता है कि उन्हें शिक्षा देनी है, उन्हें क्षमा करना है या उन पर रहम करना है, वो फिर हमारा पार्ट नहीं है, हमने अपना काम किया और फिर हम बिल्कुल निसंकल्प हो जाएं। तो इसीलिए बाबा कहता है निमित्त बनी हुई कोर्ट में लाने की मनाही नहीं है। बाबा के सुप्रीम कोर्ट कौन से हैं, दुनिया में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग कोर्ट में ले जाते हैं ना उस बात को, तो हमारी कोर्ट जो है, जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके सम्मुख हम ला सकते हैं, जो जो सेंटर्स हैं वो कोर्ट हैं, फिर हाई कोर्ट हैं और मधुबन सुप्रीम कोर्ट है ऐसा हम कहेंगे, लेकिन किस तरह से लाना है और फिर जो भी उसका हल हुआ है उसे हमें उसी तरह से निसंकल्प होकर के स्वीकार कर लेना है। और मानो हमें बाबा ने विशेषताएं दी हैं, हम सब बाबा के बच्चों में विशेष गुण तो हैं ही, वो हम अपनी विशेषताएं जानते भी हैं और उन्हें यूज भी करते हैं सेवा में, फिर हमें उसकी प्रशंसा मिलती है, तारीफ मिलती है। ऐसा भी होता है जब हम सेवा में गुणों को यूज करेंगे तो हमें लोग कहेंगे, देखो आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, या आप कितना अच्छा व्यवहार करते हो, कितना सुख देते हो। तो फिर उन विशेषताओं का हमें अभिमान भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो इतनी विशेष आत्मा हूँ, देखो लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। लेकिन वो गुण किसके दिए हुए हैं? बाबा ने हमें वो गुण और विशेषताएं दी हैं, बाबा ने ही हमें उन्हें सेवा में यूज करना सिखाया। हमें तो आता भी नहीं था कि सेवा कैसे करनी है, किसने सिखाया? बाबा ने ही हमें वो पहचान दी। और रोज रोज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं तब आज हमारे वो गुण स्थाई हैं, नहीं तो सहज वो अभिमान आ सकता है। तो निमित्त और निर्माण भाव से हमें उन गुणों को यूज करना है, बाबा की अमानत है। और मानो अगर कोई कमजोरियां भी हैं, वो भी हैं, अगर गुण है तो कमजोरियां भी हैं, तो ऐसा भी नहीं कि मुझे बार बार अपने अवगुणों को देखना है और उसे देख करके दिल शिकस्त हो जाना है, निराश हो जाना है, अरे इतना पुरुषार्थ मैंने कर लिया, मेरे ये गुण तो जाते ही नहीं है, अवगुण तो मेरे जाते ही नहीं। अब वो किसी भी विकार के वश हो सकते हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, लेकिन जो भी कमी है उसके लिए मुझे रोज अपना चार्ट चेक करना है। पहली बात, रोज रात को हम चेक करें कि सारा दिन में क्या वो कमी मेरे ऊपर हावी तो नहीं हुई। और हो सकता है मुझे उसके लिए 10 बार पुरुषार्थ करना पड़े, 20 बार पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा मेरे साथ है तो मैं विजयी हूं, कल्प पहले की मैं विजयी आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई संस्कार मेरे हो सकता है थोड़े कड़े हो गए हैं, जिन्हें मुझे दूर करने में थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। उससे बाबा कहते हैं जन्मों के बने हुए संस्कार हैं आत्मा के अंदर, लेकिन निराश नहीं होना है और उसे छोड़ भी नहीं देना है। परिवर्तन करने की शक्ति को प्रयोग करना है, जो बाबा भिन्न भिन्न विधियां हमें बताते हैं, उन विधियों को प्रयोग करते हुए मुझे अपनी उस कमी में परिवर्तन जरूर लाना है। तो इस तरह से अपने भी गुणों को स्मृति में लाते हुए, जितने गुणों को हम स्मृति में रखेंगे उतना सामर्थ्य आती जाएगी। वो बताते ना, हनुमान जी को समुद्र पार करना था तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा, इतने योजन का समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूँ। उनको कहा कि भाई आपको समुद्र पार लंका में जाकर सीता जी का संदेश लेकर के आना है। तो नहीं, उनको महसूस हो रहा था कि मैं समुद्र पार कर पाऊंगा, हालांकि उनमें वो शक्ति थी, लेकिन जामवंत ने उनको स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो। जो भी उनकी शक्तियां उन्हें जब स्मरण कराई तो उनकी वो शक्तियां जागृत हो गई और वो सहज समुद्र पार कर गए। तो बाबा भी सिर्फ यही कार्य करता है हमारे लिए कि वो हमें हमारे जो आत्मा के अनादि गुण है, आदि गुण है, उन गुणों की स्मृति दिलाता है और उस स्मृति से हम सहज समर्थ बन जाते हैं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है
धाम में तुम्हें जाना है।
तो हम सभी बाबा के बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना ही है और बाबा हमें बार बार इशारा दिलाते हैं समय कम है और इस कम समय में बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि अंत में कर लेंगे या अंत तक हो ही जाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है नहीं, लेकिन जो करना है वो अब करना है, आज से करना है, अभी से करना है। जो बाबा ने हमें स्लोगन दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कभी भी दूसरों के अवगुण को, कमियों को ना देखना है, ना वर्णन करना है और ना चित पर रखना है। अगर हुआ भी है कुछ गलत तो चित पर नहीं रखना, माना क्षमा कर दो उसको कि हर आत्मा गलती करती है और वो अपनी गलती को सुधार लेती है। अगर हमने उसके अवगुण को चित पर रखा तो वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकता है और फिर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो अपने अवगुण को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो मैं क्यों उस अवगुण को धारण करने का पुरुषार्थ करूं। हम सभी अपनी अपनी रीति से पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, तो हमें ये संकल्प हमेशा के लिए रखना है कि कभी भी मुझे दूसरों की कमियों पर, बुराइयों पर नजर नहीं रखनी है। सदा बाबा ने जिस विशेषता से उस आत्मा को अपना बनाया है उस विशेषता पर मेरी नजर जानी चाहिए और अपनी भी विशेषताओं को ही मुझे स्मृति में रखना है और ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हुए सर्वगुण संपन्न बनना है। ॐ शान्तिः।